તારીખ 31/12/1993 ગુરુદેવ શ્રી કે વચનામૃત ઉપર બોલ નંબર 500 અને 514 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 13.
તો કુટુંબ नासिका की सत्ता का शिकार विकराल भाव से हुआ हो, ऐसा विकराल भाव कहीं चला जाता नहीं। अनुभव के वेदन में ही रहता है। अनुभव तो अनुभव के वेदन में ही रहता है। परिणाम को गौण कहा, यह तो लक्ष्य प्राप्ति की अपेक्षा से कहा था। अनुभव की अपेक्षा से नहीं, ऐसा कहते हैं, अनुभव की अपेक्षा से नहीं, अनुभव की अपेक्षा से अनुभव ही मुख्य है। अनुभव की अपेक्षा से अनुभव ही मुख्य है, क्योंकि दृढ़ का अनुभव हो सकता नहीं। द्रव का अनुभव हो सकता नहीं, द्रव कुछ जानता नहीं, द्रव कुछ भेदता नहीं, समान द्रव। मेरा वैराग्य तत्व है, इसका जहां मैं लक्ष्य करता हूं, तो लक्ष्य करने से वहां वैराग्य दशा प्रकट होती है, और ऐसे वैराग्य दशा ही मुझे पूर्ण है। क्या लिया वेदना आती है, यही मेरे मुख्य है। लक्ष्य की अपेक्षा से भले गौण की, परंतु जो यह वेदन है उसको गौण करने से नहीं चलता। पूर्णानंद का नाश को जाना, वेदन में आया कि वेदन को तुम गौण मत करना, आशीर्वाद देते हैं वेदन को ऐसे गौण मत करना। हाँ, ये तो लक्ष्य कराने की अपेक्षा से उसको गौण तुझे कहा था, परंतु मुख्य तो यही है। जो आनंद अपने को प्रत्यक्ष वेदन में आता है, यही है। विजय की अपेक्षा, विधि की अपेक्षा, सुख ज्ञान को आत्मा कहा, चंद्रा का कारण विधि का प्रकरण चलता है। दुनिया में इसको ध्यान में रखकर के यह कि प्रभाव का लक्ष्य कराने के हेतु से पर्याय की गौणता का प्रतिपादन है, तथापि अनुभव कराने के विभिन्न प्रतिपादन में वेदन की यानी पर्याय की मुख्यता प्रतिपादित हुई है। वेदन का विषय मुख्य करके समझाया न जाए, न समझाया जाए, तो स्वानुभव की विधि कह सकते नहीं। स्वानुभव की भी समझा सकते ही, ये परिस्थिति इसमें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से मनुष्य जीव को इस प्रकार की योग्यता है, स्वयं के आत्महित के लिए उपदेश के अनेक वीर वचनों में से किस बात को मुख्य करना योग्य है, अगर कोई स्पष्ट सिद्धांत या नियम देखने में नहीं आता। देखिए, मनुष्य को कौन सी समस्या है, उपदेश के स्तर बहुत है, उपदेश के वचन भी बहुत है, स्तर के अनुसार बहुत सी बातें हैं। अब किस योग्यता के मनुष्य को किस वचन को मुख्य करना और किस वचन को गौण करना, ये इसको कौन समझाएगा, तो कैसे समझ सकता है, तो ऐसा समझने के लिए कौन सा सिद्धांत है। अनेक योग्यता वाले मुमुक्ष होते हैं, एक योग्यता वाले तो मुमुक्ष हो ही नहीं सकते, और सभी को उपदेश लागू होता है, तो किस योग्यता में किस सिद्धांत किस उपदेश लागू होता है, इसका कोई सिद्धांत है क्या, ऐसा कोई नियम है क्या, इनको कहीं देख लेने नहीं आता है। और प्रयोजन रूप विषय तो वो है, फिर भी प्रयोजन रूप विषय तो वही है, मुझे कौन सी बात काम में आने वाली है, इसका इसका कोई सिद्धांत नहीं मिलता है, इसके लिए तो मेरी योग्यता ही सही है तो मुझे काम में आती है, मेरी योग्यता यदि ठीक नहीं है तो शास्त्राभ्यास काम में आने के बजाय नुकसान का भी कारण हो जाता है।
अनुभव होता है पर्याय में, अनुभव होता है पर्याय में, लेकिन होता तो है दिव्य दृष्टि का जोर से।
हाँ, ध्रुव दृष्टि का जोर से, ध्रुव का आश्रय से, क्या बात हो रही है,
तो पर्याय की मुख्यता क्या नहीं
है, लेकिन वो आश्रय करना कैसे, तो दृष्टि करना कैसे, इसका क्या विज्ञान है, तो उसमें प्रतिपादन पर्याय तो मुझे तक है जाता,
इनका ये समाधान हो सकता है, जब अवेर होती है पर्याय तब पूरी गड़बड़ हो जाती है, उसी के क्षण को तो आप अपने भूल जाते हैं, अपने
बात ऐसी है कि अनुभव करना ही नहीं चाहते तो इस प्रश्न क्यों उठाते हैं, इसमें तो इसकी मुख्यता है, तो कोई ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर में कि तुम स्वामनो करने का प्रश्न क्या उठाते हो, धन की बात करो छोड़ो पर्याय की बात, कैसे स्वानुभव करने की विधि क्या है, प्रश्न आता है नहीं आता है, तो विधि भी दो प्रश्न की चर्चा करते हो, विधि पर्याय में होती है, स्वानुभव पर्याय में होता है, पर्याय की चर्चा ही छोड़ो, क्योंकि हमें पर्याय की मुख्यता नहीं करनी चाहिए, क्या
दृष्टि अनुसार में पर्याय को द्रव्य कहा है
जी,
पर्याय को द्रव्य भी कहा है,
कहा है
जी, इसलिए मुख्यता
द्रव्य का, द्रव्य का एक अवयव होने से उनको द्रव्य कहा है, यानी द्रव्य की मुख्यता से भी पर्याय का विचार किया जा सकता है, जैसे परख का विषय पहचान का विषय, लक्षण से लक्ष्य की सिद्धात्मा के स्वभाव की पहचान होती है, तिनकाल में बिना लक्षण कोई लक्ष्य की पहचान हुए ऐसी परिस्थिति है,
बराबर
लक्षण कहाँ होता है, क्या होता है लक्षण, ज्ञान लक्षण ज्ञान उपयोग में है, ज्ञान पर्याय में है, इसकी सेवा कहीं पाया जाता नहीं है, तो ऐसे जहां इस आत्मसंतुलन का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, कि जहां जितना भजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उस पर संतुलन की परिस्थिति की क्रिया होती है, फिर इसका क्या नियम है, इसका क्या सिद्धांत है? संतुलन रखना भीतर में प्रयोग का प्रयोग है, और प्रयोग की बात प्रयोग से ही समझी जाती है। प्रयोग के विषय में कहा कितना वजन देना या नहीं देना, देना तो कितना देना और नहीं देना, कम देना या ज्यादा देना, पूरा देना या अधूरा देना या बिल्कुल नहीं देना, इस विषय में हर एक अलग अलग स्तर में अलग अलग बात शास्त्रों में पाई जाती है। हमें क्या करना, ये समस्या जटिल हो जाने से इसमें भूल होने की संभावना बहुत है, इसलिए इसकी थोड़ी सी चर्चा इधर है। बात तो बहुत गहरी है, थोड़ी सी चर्चा इसकी आउटलाइन दे सकते हैं, पूरी पूरी बात तो खुद को ही प्रयोग में आकर के अपने आप से समझनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई इसका इलाज नहीं। मुमुक्षु जीव को इस प्रकार की योग्यता में स्वयं के लिए उपदेश के अनेक भी वचनों में है, किस बात को मुख्य करने योग्य है या किस बात को गौण करने योग्य है, तदर्थ कोई स्पष्ट सिद्धांत या नियम देखने में नहीं जाता, जिससे अनेक जगहों पर भूल होने की संभावना रहती है और मार्ग की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है। इस कारण से जो नुकसान होता है तो मोक्ष मार्ग पर हम आना चाहते हैं वो नहीं आ सकते। देखिए मुमुक्षु भूमिका भी पर्याय है, मार्ग पर आना भी पर्याय है, और मुमुक्षु भूमिका में से किस तरह से मार्ग पर आना ये भी रूपी विषय पर्याय है। पर्याय का इतना विज्ञान इसको समझना पड़ता है, समझने से मुख्यता इसकी समझने के कारण ही इससे मुख्य होता है, और हम ये समझे कि पर्याय मात्र की तो ममता करनी है।
भगवान जी ने ऐसे लिखा है, ध्रुव तट पर पांव रखो तो पर्याय में सब काज सहज में होंगी, पांव रखो तो पर्याय में सहज कार्य होंगे। एक बात ये भी है, दूसरी बात ये भी है, स्वयं दातार होने की बात है, पर्याय की तरफ देखने की बात उन्होंने बिल्कुल निश्चित किया है।
ध्रुव पर पांव कौन रखता है, ध्रुव रखता है
पर्याय की तो चर्चा इस उसके लिए बहुत गौण है।
उन्होंने पांव रखने की बात जो कही वो ध्रुव की है या पर्याय की है?
लेकिन
पांव रखो कौन रखता है, पांव कौन रखता है,
कार तो पर्याय में ही होगा लेकिन पर्याय पर बिल्कुल वजन नहीं दिया उन्होंने।
पर्याय पर वजन नहीं देना, लेकिन जब जब विधि का विषय आया है तो चौगानी जी को भी पर्याय के विषय में थोड़ा वजन देना पड़ा है। चार सौ छियासठ, पाँच सौ छः, चार सौ सत्तावन नियम कहते हैं कि ध्रुव को समझने के लिए, ध्रुव का आश्रय करने के लिए और ध्रुव में प्रवेश करने के लिए, ध्रुव तक पहुँचने के लिए पर्याय सेवा कोई साधन ही नहीं है, कह लिखते हैं खुद ही ऐसे कहते हैं पर्याय सेवा कोई साधन नहीं होता। लेकिन जरूरत से ज्यादा वजन चला गया तो क्या?
उन्होंने तो बिल्कुल जरूरत समझी नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल जरूरत समझी नहीं, पर्याय से कोई कथन ही नहीं किया।
चार बोल दिया है इसलिए चार रचना तो उसमें खुद ही अपना स्टेटमेंट को बदलते हैं। अब क्या करेंगे? उलझन तो वहां होती है जब बात परस्पर विरुद्ध आती है, तो अब मैं क्या करूं? अब ये भी कहते हैं कि सीढ़ी पर पैर रखो, पूरा वजन दे दो पहले तो, फिर कहेंगे कि पूरा वजन उठा लो, पूरा वजन मेरे को उठा लेना था तो वजन रखने को पूरा वजन देने को कहा क्या? ये सवाल पैदा होता है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया है इसमें, ऐसी कोई प्रक्रिया है इसमें, वो ऐसी बात है। ग्रहण में आचार्य महाराज ने 20वां बोल क्यों लिखा? पहले तो ये बात है कि जब ये धर्म की मुख्यता वाली बात एकदम एक धारे चली आई है, फिर उनको जरूरत क्यों लगे इस बात की? सत्य विज्ञान के कारण ऐसा द्रव्य समान वो का वो का वो द्रव्य नहीं बदलता, ऐसा जो प्रत्यक्ष विज्ञान इसका कारण वो द्रव्य समान इससे नहीं आएंगे थे आश्रय तो इसका करते हैं, शुद्ध पर्याय आश्रय तो इसका करते हैं। अब आचार्य खुद कहते हैं कि नहीं वो आलिंगन नहीं लेती है, इससे आलिंगन नहीं होती है, ऐसे जो शुद्ध पर्याय है
जी
नहीं आत्मा है। क्या है
शुद्ध पर्याय?
मेरी आत्मा है, बहुत रहस्य की बात है। ऐसा लिखने की क्या आवश्यकता है जो हमें पर्याय पर वजन देना ही नहीं है, एक पीला ध्रुव पर वजन तो ऐसे बात लिखते हैं कि कुछ बात हमारे थिंकिंग में आने चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। विदेश के वचनामों के लिए हैं तो 733 पर्याय के स्वतंत्रता भी है और विधि के विषय में अनुभव के विषय में उसका जो स्थान है वो स्थान भी नहीं रहता है तो संतुलन भी नहीं रहता है। हमारा जो विषय होता है आपको संतुलन का उसको छूट जाता है,
इसीलिए
आवाज में होता है निश्चय आवास होता है। वो क्या द्रव को वजन देने में कोई कसर रखता है निश्चय आवास क्या निश्चय का आवास पूरा वजन देता है, बहुत ज्यादा वजन देता है, जितना दे सकता है उतना देता है। उसको क्या कहता है? पर्याय लोक में होती है, आत्मा में तो नहीं होती है, लोक में भी नहीं होती है, अलोक में होती है, सभी कहने वाले होते हैं
तो वेदांति में चले जाएंगे वो तो वेदांति में चले जाएंगे।
वहां से निश्चयाभास को सांख्य का वेदांति में एक ही बात है तो निश्चयाभास मानने वाले बहुत सांख्य हो गया 733 में कहते हैं
जी
स्वपना से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है
जी।
क्या तो पर्याय अनुभव में आता है जो ज्ञान अनुभव में आता है वो पर्याय है या आत्मा है?
पर्याय
जो आत्मा कहते हैं। सत्रात्मा में अमृत चंद्राचार्य क्या कहता है कि ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज रूपाल को अनुभव में आता है। तो क्या ठेका भी अनुभव में आता है?
पर्याय
पर्याय लेकिन वहां उसको अनुभूति स्वरूप आत्मा कहते हैं। बुद्धि का विषय इस तरह से ही समझाया जाता है, दूसरा कोई लाभ
नहीं।
लक्षण की मुख्यता से लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जब पहुंच जाते हैं तो लक्षण पर से हमारा पैर मिल जाता है, लक्षण गौण हो जाता है, लक्षण मुख्य हो जाता है। लेकिन हम पहले से समझ चुके हों कि परिलक्षण तो पर्याय में होता है, छोड़े इसके बाद तो लक्षण बिना लक्ष्य तक पहुंचने का कोई अवसर होता नहीं है, कोई मार्ग नहीं होता, कोई विधि नहीं होती। इस तरह से विषय थोड़ा सूक्ष्म हो जाता
है। भ्रमण में भी नहीं है।
दूसरा ज्ञान में एक साथ दो प्रक्रिया होती है, जैसे हमें यहाँ से जाना है घर और जब हमें आए घर जाना है और हम चलने लगे तो हमारा ज्ञान में एक साथ दो प्रक्रिया है, जहां पहुंचना है उसका लक्ष्य साधन रहता है, उसको विचार करने की जरूरत नहीं। और जहां चलते हैं वहां हमें ध्यान देना पड़ते हैं पड़ता है कि कहीं हम किसी से टकरा नहीं जाए, तो उनको ट्रैफिक को बराबर ठीक करके आगे बढ़ना पड़ता है। एक साथ वो बात ध्यान में रहती है। ऐसे हमारा त्रिकालीय स्वभाव लक्षण से पहचाना जाता है, वेदन से भाव भाषण होकर लक्ष्य होता है, और लक्ष्य का आश्रय होने से स्वसंवेदन आता है। ठीक है, हम अपने मनुष्य की भूमिका में जो प्रयोजन को होता है उसको लेते हैं कि जो लक्षण है ज्ञान में वो वेदनभूत लक्षण है, स्मार अनुभवांश प्रतीति आएगी, परमार्थ की अनुभवांश प्रतीति शास्त्रिकाशन के रूपा मिलेगा, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति मैंने वेदनभूत लक्षण से प्रतीति आई और ज्ञान स्वभाव ऐसा है। जब ये लक्ष्य में आ चुका आत्मा तो उस पर वजन जाता है, लक्षण पर से वजन छूट जाता है, और लक्ष्य में आते ही ज्ञान वेदन में स्वपण आते ही अनुभव होता है। स्वपण से अनुभव में आने वाला ज्ञान आत्मा है, क्योंकि त्रिकालय में वेदन होता है। तो साइमल्टेनियस युक्तक रूप से एक साथ दो बात बनने के लिए इसलिए थोड़ा कठिन पड़ता है कि देव की मुख्यता करना है और काम दोनों से करना पड़ता है, वेदन को छोड़ नहीं सकते।
दृष्टि होती है प्रसन्न ज्ञान दृष्टि होती है,
प्रसन्न ज्ञान में तो ज्ञान ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, प्रसन्न ज्ञान होता है, फिर भी कारण कार्य के संदर्भ में देखा जाए तो ज्ञान के लिए
सरकार है।
आश्रय और वृक्ष होता है
आवर्तन आता नहीं और प्रयोग का वेदन रहता नहीं आता नहीं प्रयोग का वेदन होता है क्या प्रयोग का आवर्तन होता है और प्रयोग का वेदन
लेकिन एक बात अवश्य होना चाहिए
अगर किसी भी कीमत पे नहीं है तो ये बात हो जाती है कंडीशन क्या उसमें कंडीशन नहीं रहती हमारी शर्त नहीं चलेगा उनको आत्मकल्याण को करना है लेकिन हमारे शर्त से करना है ये बात किसान चलने वाली यानी कि जिसकी पूरी तैयारी है वही परिश्रम से छुटेगा लेकिन ना का अर्थ यही है कि हमको जैसे इस प्रकार से करना है हमारे रूप से करना है ऐसा भी नहीं चलता क्या हार्ड पेशेंट ऐसा कह सकता है कि डॉक्टर तुम मैं कहूं वो बोल देता हमारे दिमाग में वो बोल नहीं चले मैं कहूं ये बोली आप बोला मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा चलता है आजकल तो उत्तर की उत्तर भी नहीं दे रहे आप में जो कुछ नहीं वो बचा के निकल जाएगा
सारी की सारी बात कह रही है पूरी बात कह दी इसमें जो मैं कहूंगा वो नहीं लिखता
आज का प्रश्न पूछ लीजिए उसको उसके एक्सपर्ट को कुछ करना पड़ता है मामूली डॉक्टर का इसमें काम नहीं है स्पेशलिस्ट को हम कहें कि हम कहें रहना करो आपसे चल सकता है ये तो इससे सीरियस हमारा जो गौरव है वो हार्ट के दर्द के हिसाब से तो आज का प्रश्न का कुछ नहीं है इसके बाद क्योंकि भी गंभीर तो इसके लिए हमारे सब कोई काम में आ सकते पूरी तरह से पूरे ज्ञानी की आज्ञा में चलना वो भी अनुभव स्पेशलिस्ट है और का स्पेशलिस्ट कौन है ज्ञानी पुरुष है मात्र आत्मकल्याण का ध्येय रखें लक्ष्य रखें तो उस लक्ष्य के कारण से उसको कौन सी सूझ आती है कौन सा सही विचार आता है सर्वप्रथम यह विकास आता है कि मुझे आत्मानुभव ज्ञानी पुरुष के चरण सानिध्य में रहना चाहिए और सर्वथा क्या अपेक्षित नहीं उसमें कथनचित नहीं सर्वथा उनके आज्ञानुसार चलना है कि जिससे संवाद पर चलने के सर्वस्थान में कहीं भी गिरे नहीं बच जाए संवाद पर चलने में पढ़ने का होता है गिरने का होता है तो सर्वस्थान में बचा जा सके ऐसे वचन बताऊ देव मिलते हैं बहुत प्रसिद्ध है चौथा वचन है सबसे पहले एक सत्पुरुष को
मोक्ष नहीं मिले तुमने कश्यप के मार्ग की बात नहीं किया, मार्ग फल की बात कर दिया और गारंटी दिया मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले जाना, मेरी जेल में तेरा मोक्ष निकाल ले आ गया समझ लो। हाँ सत्पुरुष को तो खोल फिर तो तेरा मोक्ष मेरे जेल में है, मिल जाएगा तुझे नहीं मिलेगा मेरे पास में ले जाना
जिसके
देश में तेरे ऐसा कहकर के
जो महापुरुष हो चुके इसके चिंतन से
दर्शन को थोड़ा कम हो सकता है, तमाम नहीं हो सकता, अनुभव नहीं आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि जीव को क्या करना यह ऐसा स्मरण से समझ में नहीं आता। महापुरुष के जीवन स्मरण से और वर्तमान में मार्ग पर आने के लिए मुझे क्या करना वह समझ में नहीं आता। प्रत्यक्ष योग में, जबकि प्रत्यक्ष योग में बिना समझाए भी अगर कौन रहे भी तो भी स्वरूप स्थिति संभवित मानते हैं, ये हमारी मान्यता है, ये हमारा मत है कि इतना प्रत्यक्ष योग का प्रभाव हो सकता है। और इससे ऐसा निश्चय होता है कि इस योग का और यह प्रत्यक्ष चिंतन का फल मोक्ष है
जी।
इस योग का और इस प्रत्यक्ष योग का चिंतन मेरी अपेक्षा होता है, योग नहीं है तो योग की अपेक्षा, ये योग का साधन है। ब्रह्मा ये प्रश्न योग नहीं है क्या है, योग का और प्रत्यक्ष चिंतन का फल क्या है?
प्रत्यक्ष चिंतन फसल फल गुरु बड़े इनके चिंतन
हाँ है, भावना को जिज्ञासा को चिंतना को इच्छा को रजाता को, क्योंकि हमको एक बात निश्चय में आ रही है, इसके सिवा भूल गिरा मेरा होने वाला नहीं है, ये बात निश्चय में आनी चाहिए। तो इसकी खुद चालू रखेंगे, इसकी भावना चालू रहेगी, शायद आयु आयु पूरा हो जाए तो इसकी कोई चिंता नहीं है, नहीं मिला आयु पूरा हो जाए नया जन्म सत्पुरुष के चरण सानिध्य में चिंता लेकर गया है। इसलिए प्रत्यक्ष योग का और इस प्रत्यक्ष चिंतन का फल मोक्ष होता है, क्योंकि मूर्तिमान मोक्ष या सत्पुरुष है, सत्पुरुष को साधन नहीं कहा जाता, सत्पुरुष को मोक्ष कह जाता, बहुत प्रतिपादन है उसका योग का है मानसिकता का प्रतिबंध क्या है कि मोक्ष में और सत्पुरुष में हमें कौन सा नहीं दिखता है, ये मूर्तिमान है हमारे नदी लोक में क्षीर सागर है, दूध का समुद्र है, पानी का नहीं, भाव दूर क्या कहा है, भाव दूर है और स्पेशल तो हमें ये चल रही, तो इधर तो छोटा पानी का एक कलर हो गया तो यहां पर जाएंगे, क्षेत्र सागर हमने क्या काम था, लेकिन हमारे काम में कोई आने वाले नहीं है, आगे को क्या इसलिए जैन दर्शन में मन प्रवेश पद में अनेक पद को पहला नमस्कार किया, बोलना तो ऊपर के स्टेज में है, अनंत भगवान नीचे के स्टेज में है, नीचे वाले को पहला नमस्कार क्यों, विशेषता में दिमाग में लाइट होने चाहिए, ये बात क्या है, उसकी बात क्यों रहे संत परमेश की पद में प्रत्यक्ष योग का संकेत है। क्या ये प्रत्यक्ष हो सकते हैं? कुछ परमात्मा तीन काल में किसी को प्रत्यक्ष हो सकते हैं? इसको पीछे रखता हूं, क्या इसको पीछे रखता हूं। ये महापुरुष है, क्रीम जगह से भगवान को विशेष महापुरुष है। हमारा काम प्रत्यक्ष होता है, हमारा काम पुरुष है। आपने जो है 223 मंदिर के बाद दिया है, बात तो लिखा है। इसलिए प्रत्येक सर्वशास्त्रों में या पंच परमेश की पद में भी सामुवी श्री गुरु के प्रत्यक्ष योग का अत्यंत महत्व दर्शाया गया है। जो सभी साधकों के अनुभव का निष्कर्ष है, ये सार जो बात कही है, निचोड़ करके लिखे बात शास्त्रों में, ये बात जो है उसमें कोई कृपा जो सत्सान यह वस्तु स्थिति है। और ये वस्तु स्थिति में यहां कोई निमित्ताधीन दृष्टि की बात नहीं है। तुम्हारा का सिद्धांत समझ लिया और यही कहा कि जैसे ध्रुव पर बदल देना है, ऐसे उपन्यास पर बदल देना, निमित्त पर नहीं देना। यथार्थ स्थान है तो उसको भी रखना पड़ता है। उपादान को जागृत करने के लिए भी श्री गुरु की आवश्यकता प्रतिबंध होता है। इसलिए तो निमित्ता दृष्टि की बात नहीं,
आप समझ सकते हैं। दो मंदिर है, गुरु तो दो मंदिर है, पकड़ना पकड़ना आ रही है।
खुला होता है।